बाबा तू कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो, बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते
ओम शांति। सभी पहाड़ी पे जाके आए। बहने बता रही थी जीते जी मरने का अनुभव करवाया ऐसे, तो यहाँ सब आत्मा ही आई है खाली ऐसे। बहुत अच्छा, अभी हम सभी के सामने उपस्थित है हमारे वरिष्ठ भ्राता राजू भाई जी, उनका हम एक हाथ से बहुत 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 स्वागत करते हैं। तो आपकी ये बहुत बहुत विशेषता है, आप सब देखते होंगे मुरली में कई पॉइंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी भेज रहे हैं आजकल, गीता के भगवान वाली पॉइंट्स भेज रहे हैं मुरलियों में से, पत्र पुष्प भी जो आता है उसके अंदर कई पॉइंट्स आप भेजते हैं, तो मुरलियों का स्टडी और चिंतन करने की आपकी बहुत बहुत विशेषता है। यज्ञ की एक वरिष्ठ भ्राता के रूप में, फैकल्टी के रूप में तो कार्य करते ही है, साथ साथ बाबा ने जो अभी विशेष कार्य सौंपा है तो ग्राम विकास विंग के भी आप वाइस प्रेसिडेंट है अभी, है ना, वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसलिए विशेष तो आपका ज्ञान का चिंतन करने की आपकी विशेषता है। तो हम सभी के सामने अपने अनुभव के साथ रखेंगे निर्विघ्न कैसे बने, वैसे ये विषय आपकी विशेषता भी है, तो आप हम सबके सामने ये राज खोलेंगे निर्विघ्न कैसे बने रहे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने अपने बच्चों को विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है, भक्ति में भी शिव बाबा का बेटा कौन, विघ्न विनाशक गणेश, हर स्थान पर गणेश की पूजा करके फिर कार्य प्रारंभ करते हैं, श्री गणेशाय नमः। विघ्न विनाशक है, विद्यापति है, बहुत अच्छी यादगार बनाई है, मूर्ति भी कैसी है, लंबी सूंड है, बड़ा पेट है, बड़े बड़े कान है, ऐसा सुंदर अलग प्रकार का एक देवता, बहुत अच्छी पूजा महाराष्ट्र की तरफ होती है, अभी तो सब जगह होने लगी है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की बहुत पूजा होती है। सिद्धि विनायक भी है, विघ्न विनाशक भी है, विद्यापति भी है। तो बाबा ने हम सब बच्चों को यही टाइटल दिए हैं, बाबा का एक एक बच्चा विघ्न विनाशक है। ऐसा नहीं विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे तब तो विनाश करेंगे, ऐसा तो नहीं सोचते विघ्न आए ही नहीं मेरे सामने, लेकिन वो विघ्न परेशान न करें, हमें समय शक्तियों को नष्ट होने न दें, तब कहेंगे विघ्न विनाशक है। तो हम सब बाबा के बच्चे विघ्नों के रूप भी जानते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कई ऐसी बातें विघ्न रूप बन करके आती हैं, और सबसे बड़ा विघ्न तो अपने ही कमजोर स्वभाव और संस्कार का होता है, दूसरे विघ्नों को तो हम पार कर लेते हैं, कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अपने कोई कमजोर संस्कार स्वभाव होते हैं और आत्मा जब उन संस्कारों के अधीन होती है तो योग में विघ्न आता है, संगठन में चलने में विघ्न आता है, परिवार के बीच में मिलनसार बन करके रहने में विघ्न आता है। कई प्रकार के विघ्न अपने कमजोर संस्कार और स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा की अपनी उन्नति नहीं हो पाती। कुछ पिछले ऐसे हिसाब किताब भी शारीरिक हैं, मानसिक हैं, जो हिसाब किताब अपने समय पर विघ्न रूप बन करके सामना करते हैं, जिनके साथ हमारा कुछ भी रहा हुआ है लेन देन हिसाब किताब, वो कहीं न कहीं प्रकट होकर के हमारी ज्ञान मार्ग में ऊंची मंजिल में रुकावट डालना शुरू कर देते हैं, वो भी विघ्न है। कई बार इस प्रकृति में प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो प्रकृति के द्वारा दूषित वातावरण के द्वारा शारीरिक प्रॉब्लम्स आ जाती, वो भी एक विघ्न आ जाता है बड़ा। इस वायुमंडल में कई आत्माएं भटक रही हैं इच्छा लेकर के, कई प्रकार के लोग एक हैं जिनको शरीर नहीं मिला, बिना शरीर के भटक रहे, वो भी कईयों के आगे विघ्न बन जाते आके। और एक हैं शरीर में हैं, आश्रित संस्कार हैं, बहुत विकारी पतित हैं, वो भी विघ्न रूप बन जाते हैं। लेकिन एक और बड़ा विघ्न आता है, जो आत्माएं अधिक व्यक्त और व्यर्थ चिंतन करती हैं, व्यक्त भाव में रहती हैं, व्यर्थ चिंतन करती हैं, उनके आगे भी कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। तो विघ्नों की कई क्वालिटी हैं, कई प्रकार के विघ्न जिनका हम सबको सामना करना पड़ता, कोई न कोई रूप में हर एक के सामने विघ्न आते ही हैं। लेकिन कई बाबा के बच्चे उसको डोंट केयर करके, नथिंग न्यू समझ करके, पार करके हर्षित रहते हैं, घबराते नहीं हैं, खुश रहते हैं, कोई बात नहीं, बात आई है खत्म हो जाएगी। और कोई कोई सोच सोच करके अपने आप को इतना निराश कर लेते हैं, मेरे ऐसे कड़े संस्कार हैं, मैं ऐसा हूँ, दिल से कष्ट हो जाता। छोटी छोटी बातों को बहुत सोचने की आदत, विघ्न छोटा सा है लेकिन बहुत सोच लिया तो पहाड़ हो जाता, राई से पहाड़ बन जाता। तो बाबा हम सब बच्चों को इन विघ्नों की जहाँ कारण है वहाँ निवारण भी है बताता रहता है कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, बहुत सारे निवारण बाबा ने बताए हैं। तो कोई भी प्रकार का किसी के पास भी विघ्न है तो पहले उसको चेक करो, विघ्न किस रूप में हमारे सामने है। हम सब इतनी ऊंची मंजिल के राही हैं, हमारे सामने ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य है। और जब से हम बाबा के बने हैं, हमारी एक ही पढ़ाई का उद्देश्य है कि हम आत्माएं संपूर्ण पावन सतो प्रधान बन जाएं। जितने भी हमारे ईश्वरीय नियम कायदे मर्यादाएं बनी हुई हैं, वो सब इसी हमारी स्टेज को पाने के लिए हैं। अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज बने और आत्मा बाबा के साथ थोड़ करके घर चले और फिर अपनी नई राजधानी में अपना हीरो पार्ट बजाए। इसके लिए हम सब रेस कर रहे हैं। और हमारी डिग्री क्या है पढ़ाई की, जब तक वो डिग्री हमने नहीं ली तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे। कौन सी डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारी डिग्री है। और इस डिग्री के लिए सब पुरुषार्थ जो हम भट्टी करने आते हैं, स्पेशल समय देते हैं, पढ़ाई करते हैं, योग करते हैं, धारणा की क्लासेस करते हैं, उनके पीछे लक्ष्य यही है कि हम अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को सहज प्राप्त कर लें। और उसमें जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी विघ्न हैं, वो हमारी स्थिति को डगमग न करें। हमारी स्थिति सदा निर्विघ्न, एक रस, अचल और रोल बन करके रहे। परीक्षाएं, समस्याएं किसके सामने नहीं आती, हर एक के सामने आती, किसी न किसी रूप में, छोटा बड़ा नया पुराना सबके सामने किसी न किसी रूप में माया अपना वार करती है, समय पर सामना करती है। और बाबा कहता है जितना कोई रुस्तम है उसके सामने और वो बड़ा रुस्तम बन करके आती है। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात में बहुत सोच सोच करके उसको बड़ा रूप नहीं देना। जिसके साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हजार भुजाओं वाला, उसको इन छोटी छोटी बातों की क्या परवाह है, बातें आएंगी चली जाएंगी। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई विघ्न दिखाई देता है तो उसको समाप्त करने के लिए क्या करें, उसके लिए कौन सा यज्ञ रचें जो खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको आज 6-7 बातें सुनाता हूं, जिससे आपके आगे अगर कोई विघ्न आएगा तो उसको सहज पार कर सके। डोंट केयर, ज्यादा परवाह नहीं करनी है, आई है बात खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको वर्णन चिंतन अधिक नहीं करना, सिर्फ नॉलेज फुल बन करके देखो। जैसे लंबी सूढ़ है परखने की निशानी, गणेश की लंबी सूढ़, जिससे वो दूर से ही परख लेता है, सूंघ लेता है क्या होने वाला है, क्या सामने आने वाला है। तो परखने की शक्ति अगर है, नॉलेज के आधार से हम समझते हैं कि ये कारण बन रहा है, जैसे कोई बादल बनते हैं दिखाई देता है घटाएं आ रही हैं तो हम होशियार हो जाते हैं अभी बरसात या आंधी आने वाली है, इतना तेज बरसात का आसार दिखाई दे रहा है, हम प्रबंध कर लेते हैं, छाता ले आएंगे, रेनकोट ले आएंगे या कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जिससे उससे बच सकें। तो ऐसे ही जब परखने की शक्ति हमारे पास है तो पता चल जाता है कि ये कारण बन रहे हैं, इसके कारण कोई न कोई विघ्न आ सकता है और आएगा तो हम इसको इस विधि से पार कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञानी तू आत्मा समझदार बन करके विघ्नों को समझ करके पार करना है। और छोटी मोटी बातों को, इतना बड़ा पेट है बातों को हजम कर लिया पचा लिया, वर्णन चिंतन नहीं करना। कहते हैं कान जो बड़े बड़े हैं, इतने बड़े कान में अगर छोटी चींटी चली गई तो बेहोश कर देंगे। हाथी के कान में अगर चींटी जाए, वैसे 1000-50000 चींटियां आ जाएं, पैर के नीचे कुचल देगा। लेकिन अगर एक चींटी रेंगते रेंगते कान तक चली गई तो उसको बेहोश कर देगी। तो बाबा भी कहता है कोई भी बातें हैं उनको सुनो नहीं, देखो नहीं, बातें आएंगी चली जाएंगी। कान तक अंदर गई तो अंदर अंदर डिस्टर्ब करके आपके चिंतन को खराब कर देंगी, माइंड को डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि कोई भी पर चिंतन करे, व्यर्थ बातें करे, कोई भी इधर उधर की बातें नेगेटिव सुनाए। बाबा ने कहा है बच्चे इसको नहीं सुनना, हियर नो इविल। ये सब इविल बातें जितनी हैं जो देह विमान उत्पन्न करने वाली बातें हैं वो सब इविल हैं, और ऐसी इविल बातों को मुझे नहीं सुनना है, न देखना है न सुनना है न मुख से वर्णन करना है और उसको कभी सोचना भी नहीं है। इतना अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए कि ये सब मेरे काम की बातें नहीं है, नहीं तो मेरे चिंतन को बिगाड़ देंगे, हमारी स्थिति को नीचे ऊपर कर देंगी, हमारे अंदर अपने बड़ों के प्रति, यज्ञ के प्रति, मुरली के प्रति कहीं न कहीं ऐसी शक पैदा कर देंगी जो हमारा माइंड डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए क्या करना, अगर कोई ऐसा सुनाने वाला आए भी, वर्णन भी करे तो ज्यादा रस नहीं लेना, सुना अनसुना कर दिया, जैसे सुन ही नहीं रहे हैं, देखा देखते हुए भी नहीं देखा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को इन विघ्नों को अंदर न लेकर के उनको बाहर से ही अवॉइड कर दिया जाए, नहीं तो हमारी स्थिति को बिगाड़ते बिगाड़ते हमारे आगे बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। तो ध्यान रखना, नॉलेज फुल आत्माएं कोई छोटी बात को अंदर लेकर के चिंतन नहीं करती, उसको समाती हैं, सामना करती हैं, सहन कर लेती हैं। साथ साथ जरूरी है संगम युग पर परमात्म दुआएं, विघ्नों से वो आत्माएं सहज पार हो जाती हैं जिनके पास बाबा की और बड़ों की दुआएं हैं। मैंने अपने जीवन काल में ये बहुत अंदर से लक्ष्य रखा है। विघ्न आए हैं, बातें लौकिक से भी आई, अलौकिक परिवार में भी कई प्रकार के संस्कारों का टक्कर होता है, जहां संगठन बड़े हैं वहां बातें भी आती हैं। लेकिन अगर हम शुरू से एक बाबा की श्रीमत का पालन किया, आज्ञाकारी बन करके रहे हैं, बड़ों के नजदीक रह करके उनके दिल को जीता है, उनके आज्ञाकारी सपूत बन करके रहे हैं, तो उनकी बहुत गुप्त दुआएं हैं। जब मुझे कोई कहता है ऐसी बात आई आपके आगे, मैं कह कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बैठे हैं, हमारे सिर पर उनकी छत्र छाया है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो दुआओं की छाया जो ऐसी है, जो कोई भी बड़ी बात भी आएगी ना, अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरे आगे जब लौकिक में मैं यहां मधुबन में रहने लगा, तो 6-7 साल रहने के बाद बहुत बड़ा पेपर आया, और वो पेपर ये था कि मैं लौकिक में परिवार में इकलौता बेटा था। मेरे पिताजी 3 भाई थे, उनके बीच में मैं अकेला था, और अकेला होने के कारण पहले दादी ही कहती थी तुमको कैसे छुट्टी मिलेगी। दादा जो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, वो बहुत विरोध करते थे, बहुत एकदम, कैसे जाओगे आप, नहीं जा सकते हो, घर का कुल दीपक चाहिए आपको, तो शादी करनी है, घर संभालना, ये करना, बहुत सारी उनकी अपेक्षाएं थी। खुद कुमार थे लेकिन बच्चों को तो नहीं जाने देते कहीं भी। तो अचानक माँ ने शरीर छोड़ दिया घर में, और कारण यही बना कि उसका थोड़ा सा मोह था, अटैचमेंट थी, और दादाजी ने उसको यूज किया, उनके पास तंत्र मंत्र था, कुछ साधन थे, उसके अंदर कुछ करके उसको कहने लगे कि तुम राजू को बुलाओ, राजू को बुलाओ। तो बस उसके मुख से और कोई शब्द ही नहीं निकले, सबसे बोले उसको बुला दो, उसको बुला दो, उसको बुला दो। अब उस समय थे कोई फोन नहीं थे, कोई टेलीग्राम ऐसे नहीं साधन, इतनी जल्दी कहाँ, एकदम यूपी का एक छोटा सा गांव, और वहां से यहाँ मैसेज पहुंचे तो 5-7 दिन लग गए, और 5-7 दिन जब तक लगे तब तक माँ ने शरीर छोड़ दिया। अब जब शरीर छूटा तो दादी को पता चला, समाचार आया, तो दादी के अब तुम्हारे पर बहुत बड़ा पेपर है, ये विघ्न आया है, अब इसको कैसे पार करेंगे। बाबा की दुआएं तो हैं, बड़ों की दुआएं हैं, साथ है, लेकिन इसको सामना तो तुमको ही करना पड़ेगा, फेसिंग पॉइंट तो आपके आगे आएगी। अब जब मैं गया तो मेरे लिए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम वहां क्रिएट थी, मेरे शादी की पूरी तैयारी थी, लड़की भी रखी हुई थी, और शादी की तैयारी तो छोड़ दो, तो खैर समाज वाले पड़ोसी जो सोचते हैं वो तो सोचते ही हैं, लेकिन वो जो घेरा था, जो अशुद्ध आत्माओं का अटैक हुआ था माँ के ऊपर, जिसके कारण हम माता गई, उसका बहुत प्रभाव था। और मैं बाबा का बच्चा, बेफिक्र बादशाह, निर्विघ्न, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या विघ्न आएगा मेरे आगे, मैं तो हंसते खेलते गया। हमने कहा माँ गई, अच्छा हुआ पिताजी कुमार हो गए, वो भी समर्पित हो जाएंगे। मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरे लिए ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ एक संदेशी ले गया था, बहन साथ थी, और मेरे लौकिक बहन भी साथ थी, 3-4 लोग मधुबन से गए। और जब वहां गए तो पहले दिन गुरुवार आया, कोई ऐसा दिन आया, हमने कहा भोग लगाओ बाबा को। तो जब भोग लगाने बैठे तो बाबा ने सारा दृश्य ऊपर दिखाया उस संदेशी को, और संदेशी को नहीं दिखाया, साथ साथ हमारे चाचा जी को भी बहुत अच्छा वरदान था, चाचा जी अभी भी यहीं समर्पित हैं, तो उनको भी दिखा दिया वही दृश्य। तो संदेशी ऊपर से आके फट से आ गई थोड़ी देर में, भोग लगाने गई थी, और मैंने तो सोचा था जहां माँ का संस्कार किया है मैं वहां जाके योग करूंगा, ये करूंगा, 13 दिन रह के ये करूंगा, बहुत सारे प्लान करके यहां से गया था, और वहां पर बाबा ने प्लान फेल कर दिया सब, बोला बच्चे को बोलो इस स्थान पर केवल 3 दिन रहने की छुट्टी है, 3 दिन बाबा की छत्र छाया है, और अगर 3 दिन से ज्यादा रहेगा तो बाबा जवाबदार नहीं है। बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से दिखाए जिसमें मुझे ऐसे बांधा जा रहा है, ऐसे लपेटा जा रहा है, वो सब दृश्य ऊपर से बाबा ने उसको दिखाया, और उधर चाचा जी को भी दिखा दिया, जिससे ये भी नहीं शक पड़े कि संदेशी अपने मन से कह रही है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मस्त था, कोई चिंता नहीं थी कुछ होगा, मैं तो मधुबन में रह रहा था। बहुत बड़ा विघ्न आया, लेकिन वो विघ्न ऐसे पार हुआ जैसे बस कहते ना मक्खन से बाल निकाल लो, कोई भी तकलीफ ना हो। तो मैं ऐसे ही बोला कि बाबा ऐसा कह रहा है 3 दिन रहना है, हम तो चाहते ही 3 दिन रहें, ज्यादा दिन यहाँ क्या करेंगे। तो हलचल हो गई पूरे गांव में, ये कैसे होगा, अभी घर में कौन रहेगा, कौन खाना बनाएगा, आप शादी करके इसको छोड़ के जाओ फिर चले जाओ। मैंने कहा ऐसा है, शादी एक बार की जाती, वो मेरी हो चुकी है, और ये जो भाई हमारे सब कुमार हुए गए घर में भी कोई माता नहीं है, इनको भी बाबा सरेंडर करना चाहता हो, इनका संकल्प यही था कि बच्चे समर्पित होंगे तो हम भी हो जाएंगे। तो बाबा कोई कल्याणकारी ड्रामा है, सब कल्याण समाया हुआ है, इसलिए आप लोग इसकी चिंता नहीं करो, लेकिन जो ऊपर से डायरेक्शन मुझे मिला है मैं वही चल करूंगा। मैं दूसरे दिन मैंने ब्रह्मा भोजन कराया, सब गांव वालों को इकट्ठा करके जो माता के लिए करना था कर दिया, और तीसरे दिन जब निकलने लगा तो पिताजी को बोला कि अभी दिखाओ मुझे क्या क्या घर के अंदर है। तो घर के अंदर तो माताएं क्या रखती होंगी, हमारे शादी के लिए बहुत सारे जेवर थे, बहुत वैरायटी कपड़े थे, बहुत वैरायटी बर्तन थे, वो माता जी ने सब संभाल संभाल के इकट्ठा करके रखे थे। मैंने कहा देखना वो आत्मा जो है ना यहीं भटकेगी, निकलेगी नहीं, जाएगी कहीं नहीं, जन्म लेगी, इसलिए सबसे पहले ये जो चीजें रखी है ना इसको दान कर दो, या सेंटर पर दे दो या बेच दो। तो सोचने लगी ये क्या बोलता है, नहीं प्रॉपर्टी क्या करेंगे, जब मैं बाबा का बन गया और आप लोग सब बाबा के हो तो इसको क्या करेंगे, इसको अभी अभी निकालो, यही भूत है, इसके आगे भूत घूमेगा। तो कहने लगे अच्छा ठीक है जैसे आप कहते हो। तो वो सब देखा और मैंने तो तीसरे दिन वहां से रवाना हो गया, निकल गया, और पिताजी को बोला जिस दिन आप इस बात को खत्म करोगे, दुकान नहीं बेच, घर नहीं बेचना, घर बाबा को दिया है, कुलदीपक बाबा है, खेती नहीं बेचना, वो तो हर साल देती है कुछ न कुछ, गांव वाले खेती करेंगे, लेकिन आप लोग हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। केवल मैं समझता हूं 1 साल लगा होगा सब सामान इकट्ठा निकालना करना सब में। फिर उसके बाद मैंने चाचा जी को पहले सेवा में बुलाया, यहां रख दिया आवास निवास में। ये थोड़े दिन के बाद पिताजी को बीमार रहते थे, हमने कहा दादी हम तो जा नहीं सकते, उनको कोई सेवा करने वाला भी नहीं, चाचा यहाँ है उनको भी बुला लें। तो दादी कहती भले बुला लूं। तो पिताजी को भी सरेंडर कराया, चाचा जी को भी सरेंडर कराया, वो भी आ गए, सब यहीं रह गए, और घर में कुलदीपक बाबा को बिठाया, भोग लगता, मुरली चलती, अभी तक भी बहुत अच्छा गीता पाठशाला चलता। तो विघ्न आते हैं, ऐसे नहीं कोई के आगे आते ही नहीं, सब प्रकार के विघ्न आए, शरीर का भी आया, बीमारी का भी बहुत बड़ा विघ्न आया। तो विघ्नों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन दुआएं लो बाबा की, बड़ों की दुआएं समय पर ऐसा साथ देती हैं जो हर बात पार हो जाती, इसलिए स्टॉक जमा है दुआओं का, और सबके पास होना चाहिए। जितना आप सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, श्रीमत में हाजी करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देकर के चलते हैं, समय पर मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, उतना गुप्त रीति से बाबा की, बड़ों की, निमित्त की दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं इन विघ्नों को पार करने में बहुत मदद करती हैं। साथ साथ अगर हमारी स्थिति में सर्वशक्तिमान बाबा की याद रहती है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, तो आत्मा सर्व समर्थ बनती जाती है। समर्थ आत्माएं जैसे कमजोर के ऊपर सब प्रकार के वार होते, हमारा शरीर भी कमजोर होगा तो थोड़ा भी हवा पानी चेंज होते ही बुखार आ जाएगा, छींके आएंगी, जुकाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर आत्मा कमजोर है तो छोटी छोटी बातें उसको बीमार करेंगी, फीलिंग आ जाएगी, मूड खराब हो जाएगा, कोई ने कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी, संगठन अच्छा नहीं लगेगा, ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगेगा। फिर पता क्या कहते हैं, हम तो अपने घर में पीस ऑफ माइंड में मुरली सुन लेते हैं, सेंटर पर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई छोटी बात फीलिंग में आई है, मूड खराब हुई है, या कोई नहीं पूछा गया, कभी कुछ हुआ, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, हम तो घर में सुन लेते हैं, कट ऑफ। माया जब वार करने वाली होती ना, जैसे कोई दुश्मन किसी देश पर वार करता है तो क्या करता है, उसके सारे रसद को पहले बंद करना चाहता है, जो सामग्री उसके पास सप्लाई हो रही है पानी बिजली कनेक्शन काटेगा, पानी कनेक्शन काटेगा, फिर खाने पानी का जहां से कोई साधन आ रहा हो उसको कनेक्शन काटेगा, और जब देखेगा सब कनेक्शन कट गए, कोई से मदद इसको नहीं मिलेगी, फिर अटैक करेगा, वार करेगा। ऐसी माया भी वार करती है। अगर कोई का धीरे धीरे परिवार से स्नेह कम हो रहा है, मुरली से स्नेह कम हो रहा है, थोड़ा दूरी बढ़ती जा रहा हो, जान लो माया इसके ऊपर अटैक करने वाली है, वार होने वाला है। इसलिए इससे बचने के लिए कभी भी संगठन से दूर नहीं भागना, परिवार से दूर नहीं भागना। ये परिवार हमारी सुरक्षा करता है, बाबा की शक्तियां मदद करती हैं साथ, अगर हम बाबा को सदा साथी बना करके रहते हैं। नहीं योग लगता है, नहीं मजा आता मुरली के अंदर, फिर भी जाओ बैठो, कुछ न कुछ अंदर जाएगा, कभी न कभी टच हो जाएगा, बाबा अपने आप करेगा। लेकिन संगठन से किनारा नहीं करना, सेफ्टी उसी में है, परिवार के साथ रहने में सेफ्टी है। कोई भी विघ्न आएगा ना परिवार के साथ से, उसके मदद से कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनेंगे, उसके अनुभव सुनेंगे, कहेंगे इसने पार कर लिया, मैं भी पार हो जाऊंगा, क्या बड़ी बात है। तो संगठन से अगर दूर हैं और समझते हैं हम तो मुरली सुन ही रहे हैं, तो उसमें समाधान नहीं मिल पाता। इसलिए संगठन को महत्व दो और बड़ों की दुआओं पर ध्यान दो, और समर्थ स्थिति के लिए कुछ न कुछ अच्छी तपस्या करो। समर्थ वही बनता है जो बहुत अच्छा कनेक्ट रहता है बाबा के साथ। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, और अगर हम कुछ मिनट भी बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, शक्तिशाली आत्मा बन जाती है। शक्तिशाली आत्मा जिसके साथ स्वयं बाबा है, भगवान है, सर्व समर्थ है, उसके लिए बातों की परवाह नहीं रहती है। सब बातें आई खत्म, डोंट केयर। इसलिए कोई भी मान शान इज्जत कुछ मिले न मिले, कोई पूछे न पूछे, बाबा तो पूछ रहा है, बाबा तो सम्मान दे रहा है, इतना सत्कार मिल रहा है। हम तो कभी कभी कहते हैं बाबा ने जितना हम लोगों को सम्मान दिया है, ऊंचा सम्मान याद दिलाया है, व्यक्ति क्या देगा। और बाबा इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, बंद ही नहीं करता, देता ही जाता है, रोज महिमा करता है, रोज प्रशंसा करता है। तो अगर हम बाबा को एक साथ ही सहारा बना लेते हैं तो बातें आएंगी, खत्म हो जाए, परवाह नहीं है। इसलिए कोई फीलिंग में नहीं आना है, मूड खराब नहीं करना है, मान मिले न मिले, पूछे न पूछे, सेवा दें या न दें। कई लोग छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते, इसको सेवा मिलती मेरे को सेवा नहीं मिलती, आजकल इसकी भी रेस चलती, मुझे भी कोई सेवा मिलनी चाहिए। अरे भाई नहीं मान लो आपको कोई दे रहा है, आपके पास शक्ति नहीं है क्या, मन की शक्ति है, एकाग्र होकर के बैठो, देखो कितनी अच्छी सेवा होती। आप अपनी अच्छी स्थिति में रहो, लोग आपके पास आगे पीछे आएंगे, ज्ञान सुनाने बिना आप रह ही नहीं सकोगे, सुनाओगे ही, लेकिन स्थिति अच्छी बना के, मूड खराब नहीं करो, ये सेवा देता है या नहीं देता। कल एक कुमार का मेरे को फोन आता है, भाई जी आपके क्लासेज में तो आता है कुमार जीवन सेवा में लग जानी चाहिए, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, मैं सेवा मांगता हूँ बहनों से, बहने हमको सेवा ही नहीं देती, यहाँ कोई सेवा ही नहीं है, और कहता हूँ मधुबन जाऊं छुट्टी नहीं देती, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। ऐसे बहुत फोन आते हम लोगों के पास, भाई किसने कहा था तुम नौकरी छोड़ दो, हमने क्लास में तो कहा नहीं। कुमार जीवन अगर बिजी नहीं है तो कहीं ना कहीं माया सताएगी, उसको बिजी रखो पहले, धीरे धीरे चांस लो, धीरे धीरे कहीं सेवा मिल जाती है, कोई योग्यता के आधार से मधुबन में ओआरसी में कहीं भी बड़े स्थान पर कुमारों को मिल जाती है, भाग्य है मिल जाती है, सेवा करो। लेकिन पहले ही सब कुछ छोड़ करके बैठ जाओ, क्लास सुन लिया बैठ गए और आगे नहीं मिला, कोई ने नहीं पूछा, नहीं संस्कार स्वभाव मिल पाए, संगठन में चलना कोई इतना सहज थोड़ी होता है। तो हम कहते बैलेंस से चलो, नहीं तो बहुत बड़ा तुम्हारे आगे विघ्न है, कोई नहीं पूछेगा, कल आएगा मैं तो अकेला पड़ गया, मेरा तो कोई नहीं है, फिर जाओ शादी करो, बंधन में बंधो, बहुत सारे विघ्न तुम्हारे आगे क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट तुम कर रहे हो क्योंकि अपने आप को ज्ञान योग से बिजी नहीं किया, अच्छे अच्छे सेवा के प्लान बना करके, अच्छे चिंतन करके, कुछ न कुछ नवीनता करके बिजी रहने की कला सीख लो। बिजी रहोगे तो सब आपको पूछेंगे, आपको कहेंगे ये सेवा कर लो, योग्य तो बनो। जो योग्य होता है उसके सेवाएं तो पीछे पीछे भागती हैं, हमें सेवा दी जाए मांगने क्या जरूरत है। तो ये कई प्रकार के विघ्न हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, साधारण बातें सोच करके, ऐसी ऐसी बातें सोच करके, इसको चांस मिलता है मुझे नहीं मिलता, इसको पूछा जाता मुझे नहीं पूछा जाता, परिवार में अनेक प्रकार के विघ्न हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। है कुछ नहीं, जाओ बाबा की मुरली सुनो, मस्त रहो, ज्ञान योग की स्थिति बनाओ, आपको चांस मिलता है, छोड़ो नहीं, अगर चांस मिला और आपने एक बार ना कर दी, दो बार ना कर दी, लोग कहेंगे तो करता ही नहीं, इसको छोड़ो। बाबा कहता चांस लेने वाले चांसलर तो बनो, कोई चांस मिला है ले लो, नहीं आता ये कहोगे तो किनारा हो जाएगा। आता है या नहीं आता, चांस मिला है ले लिया, अपने आप बाबा कराएगा, बड़ों की शक्ति करा लेगी। आज तक हम लोग जो आगे बढ़े इसी आधार से बढ़े हैं, यज्ञ के अंदर जो चांस मिला बड़ों ने कहा ये करना है, हाँ जी, कभी कहा ही नहीं ना जी मुझे नहीं आता है, मुझे सिखा कैसे करूंगा, मैं अकेला हूं, मेरे पास इतनी सारी ड्यूटी आ गई, इतने डिपार्टमेंट मिले। आप जानते हो ना, जो हाँ जी करता उसके पास बहुत आ जाता है, जो ना जी करता वो ऐसे फिर घूमता है। लेकिन हम कहते हमारा ये भाग्य है, जितनी सेवाएं मिलती उतने हैंड्स मिल जाते और साथी मिल जाते, करने वाले मिल जाते। बाबा करण करा उनहार करा लेता, बड़ों की दुआएं और जल्दी करा देती। इसलिए अगर हम हाँ जी करके सेवा का चांस लेते जाते तो सेवाएं मिलती जाती है, ना जी कर देते तो किनारा हो जाता। इसलिए विघ्न जीत बनने के लिए सबसे पहले कोई बात के विस्तार में नहीं जाओ। एक बहुत अच्छी यादगार में कहानी है, द्रौपदी का वर्ण किस आधार से हुआ, वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य है। कहते हैं द्रौपदी को वरने के लिए एक मछली ऊपर रखी गई थी और ऊपर टंगी मछली की जो आंख थी वो तेल के अंदर देखनी थी, लक्ष्य भेदी बाण चलाना था, और वो केवल अर्जुन को आता था और कोई को पता नहीं था। इतनी बड़ी मछली और उसके अंदर आंख की पुतली, और वो भी ऊपर नहीं देखना है, देखना है तेल में नीचे कड़ाही के अंदर, उसकी छाया को देख करके फिर तीर चलाना है, और जो उसको मारेगा उस आंख पर तीर लगेगा उसकी द्रौपदी हो जाएगी। ये ध्रुपद, द्रौपदी नहीं ध्रुपद। अगर हमारे को अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी ऊंची मंजिल को पाना है, तो उसको वरने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमको विस्तार को नहीं देखना है। हैं विस्तार, बहुत विस्तार बढ़ रहा है, बहुत बातें बढ़ेंगी, संगठन बढ़ते हैं तो बातें भी बढ़ती हैं, बढ़ेंगी, विस्तार में नहीं जाना। लेकिन आंख माना बिंदु को देखना है, बिंदु को देख के बात करनी। ऐसी प्रैक्टिस जो एकदम लक्ष्य भेदी वाण चले, केवल एक बाबा ही दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे। अगर हम आत्माओं को देखेंगे तो आत्माओं की स्थिति आज बड़ी अच्छी है, कल एकदम डाउन है, इसलिए बाबा ने मना किया केवल सी फादर फॉलो फादर, किसी भी देहधारी को नहीं देखना। अगर देहधारी को देखेंगे तो आपकी स्थिति में कई प्रकार के नए नए विघ्न क्रिएट होते रहे, उसको देख करके आपका पुरुषार्थ डाउन हो जाए। तो हम सबको एक विस्तार में सार को देखने का अभ्यास करना है। बहुत विस्तार है, बहुत सेवाओं का विस्तार है, यज्ञ का विस्तार है, संगठन में विस्तार हो रहा है, और उस विस्तार में अगर हम गए तो क्यों क्या कैसे। परसों मुरली सुनी, कितनी रमणीक बाबा ने सुनाई, रावण के शीश ब्राह्मणों के अंदर लग जाते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये रावण के शीश लगते जाते, एक काटते दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा काटते तीसरा आ जाता। विस्तार को अगर देखेंगे तो इसमें उलझे रहेंगे, क्यों, क्योंकि रावण के शीश खड़े रहेंगे। शक्ति बाबा के साथ में है, सर्वशक्तिमान साथ है, तो काटते जाएंगे, पार हो जाएंगे। इसलिए कोई भी बात में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, अगर विघ्न जीत बनना है तो एक सेकंड में देखते हुए भी नहीं देखा फुल स्टॉप, मेरा कोई कनेक्शन नहीं, जो हो रहा है वो जाने, मैं इसके बीच में ना हूं, नहीं तो वो विघ्न हमारे लिए, हमारी स्थिति को बनाने में बहुत बड़ी रुकावट डाल देगा। अगर हमने देखा सुना वर्णन किया तो कई बार उस कारण को हम नहीं समझ रहे हैं क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी को हम वातावरण में फैला रहे हैं। करने वाला उससे मुक्त रहता है, नहीं उसके प्रभाव में आता, उस पर बोझ नहीं चढ़ता, लेकिन उसको देख करके जिसने वर्णन किया और उसने वायुमंडल बनाया, उससे भी करने वाले से कई गुना अधिक पाप उसके पर चढ़ जाता। उसके आगे योग में बड़े विघ्न आते, उसको स्थिति बनाने में बहुत विघ्न आते, क्योंकि बोझ जो है हल्का बनने नहीं देता। इसलिए ध्यान में रखना है कि अगर कोई बात हमको अच्छी नहीं लग रही है, परिवार की, संगठन की, यज्ञ की, कहीं की भी, तो मेरा फर्ज है केवल शुभ भावना संपन्न बन करके उसको सकाश देना, शुभ चिंतक वृत्ति से उसको, उससे बचाना, न कि उसकी बात को ले करके उछाल देना, फैला देना। और अगर उछाला और फैलाया तो हमारे मानसिक स्थिति में बहुत बड़े विघ्न क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कर्मों की गति पाप बनाती है, पाप बनते हैं इससे। बहुत ध्यान रखना पड़ता है संगठन के बीच में कि हम विस्तार में न जाएं और विस्तार को देख करके एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं। मुझे वर्णन चिंतन करने की बाबा ने मना की है, बच्चे नहीं देखो, नहीं सुनो, नहीं बोलो, आपका कोई कनेक्शन नहीं। जहां पर हमारी कोई ऐसी जवाबदारियां हैं वहां पर हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन माथा नहीं तोड़ते, ठीक करना है ठीक है, हो जाएगा, शुभ भावना रखते हैं, शुभ चिंतक वृत्ति से कहते भी हैं, इशारा भी करते हैं, लेकिन स्थिति बिगाड़ करके नहीं। तो ये बातें छोटी छोटी अगर ध्यान पर रखेंगे ना, तो वाह रे मैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, वाह रे मैं किया जो बात आई सहन किया और समा लिया, वर्णन चिंतन नहीं किया, सहन किया, समा लिया, अपने आप वो विघ्न खत्म हो गया। क्या था पता ही नहीं चलेगा आपको, आया था चला गया। सब विघ्नों को पार करने के लिए सिर्फ सहन करने और समाने की शक्ति धारण करो। कुछ बातों में सहन करना ही पड़ता है, परिवार है, समाज है, कई बातें लोग कहेंगे बोलेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप निभा रहे थे उससे थोड़ा सा किनारा हटे हो, किनारा किया है, तो विरोध करेंगे, विघ्न डालेंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन परवाह नहीं करनी है, पार हो जाएंगे, बाबा साथ है। सहन करके समा करके थोड़े दिन अपनी स्थिति अच्छी रखोगे तो थोड़े दिन के बाद आपको मानेंगे ये तो बहुत पक्के हैं, इनका फाउंडेशन बहुत मजबूत है, इनकी धारणाएं बड़ी अच्छी हैं। पहले धारणाओं के कारण इतना विरोध किया कि क्या तुम ब्रह्मा कुमारी में गए, तुमको ये सिखाया गया क्या कि खाना नहीं है, देखना नहीं है, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, क्या क्या नियम बनाए हैं बहनों ने, भड़काएंगे आपको। लेकिन जब उसमें आपको पक्का देखेंगे, मजबूत देखेंगे, तो अपने आप क्या कहेंगे, भाई आप बड़े पक्के हो, आप जैसे जीवन किसी की भी नहीं। हमेशा एक बात मैं ध्यान पर रखता हूं कि हमारा त्याग तो प्रसिद्ध है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, लेकिन मेरा भाग्य कितना महान है उसको प्रसिद्ध हम नहीं कर पाए अभी तक। हम भाग्यवान आत्माएं हैं जो इन सब बातों से बच गई, कितना व्यर्थ खर्चा बचा है हमारा, खान पान बचा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, हमारा नियम अगर हमने यथार्थ रीति से अमृत बेला उठना शुरू किया, स्नान पानी करना शुरू किया, सब बातों से स्वच्छता को अपनाया तो हमारा तन और मन स्वस्थ हो गया। ये भाग्य हमारा जो है वो दिखाना है हमको, त्याग नहीं दिखाना। हमने जो ये नियम पालन किए हैं उन नियमों पर चलने से हमारे को क्या क्या फायदे हुए हैं वो फायदे लोग देखें। तो विघ्न जीत स्थिति के लिए ये जो विघ्न लोग डाल रहे हैं हमारे आगे वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, कहेंगे नहीं आपकी जीवन बहुत महान है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा समय शांति से, जवाब नहीं दो ज्यादा, बहुत जोश नहीं दिखाओ, सिद्ध नहीं करो, ज्ञान सुनाने की कोशिश नहीं करो। कई लोग अपने परिवार में जिसमें चले हैं, पले हैं, रहे हैं, वहां ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं देखो एक कहावत है ना, एक बिल्ली के लिए कहते हैं 900 चूहे खा के फिर हज को चली। जब तक ठीक थे, जब तक परिवार में थे, तब तक क्या क्या काम कर रहे थे, कैसे कैसे व्यवहार करते थे, और आज बाबा के बन गए, ब्रह्मा कुमारी में चले गए, तो आज ये करेंगे, आज ये पालन करेंगे, आज ये पालन करेंगे, तो लोग हंसते हैं। लेकिन हमारी अगर जीवन देखेंगे सचमुच कितना निश्चिंत हो गया, कितना स्वच्छ हो गया, कितना तनाव मुक्त हो गया, प्रभाव पड़ जाएगा उसका, अपने आप लोग मानेंगे कहां से ऐसे जीवन बन गई। तो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं सुनाओ, लेकिन अपने जीवन से, अपने धारणाओं से, अपने खुशनुमा व्यक्तित्व से लोगों पर प्रभाव डालो कि सचमुच इनके पास यहां जाने से इनका ऐसा श्रेष्ठ जीवन बन गया, फिर विघ्न डालना बंद करें, फिर रुकावटें नहीं आएंगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो अंडरलाइन करके चलना पड़ता, जैसे बाबा कहता है बच्चे कंबाइंड स्वरूप में रहो, बाबा आपके साथ कंबाइंड है, सर्वशक्तिमान साथ है, बातें आएंगी, जिसके साथ इतना बड़ा है उसे उस पर क्या कर सकते हैं, चली जाएंगी। कोई भी बात आती है बाबा को साथी ऐसे बना लो, बाबा आप हमारे साथ हो ना, और बाबा आजकल यही कह रहा है मुरली के अंदर, दिल से बाबा कह के देखो मैं आ जाऊंगा दिल से मेरा बाबा को। एक बार एक भाई हमारा केस में फंस गया पारिवारिक झगड़े के अंदर, बहुत अनन्य परिवार है, पहले दोनों मियां बीवी ज्ञान में चलते थे लेकिन धीरे धीरे वो बहन को परिवार वालों ने भड़का लिया, और भाई तो बहुत पक्का था, उसने एक रिट्रीट के लिए बहुत बड़ी जमीन लेके दे दी, पैसा था उसके पास सेंटर के लिए बहुत बड़ी जमीन लेके दी, तो उसके युगल को भड़का भड़का के लोगों ने उसके विरोध में कर दिया, उसके भाइयों ने उस पर ऐसा केस डाल दिया कि उसको कभी जमानत भी न मिले, और बलात्कार का केस लगाया, और वो भी एक माई के साथ, मजदूर जो काम करने वाले के साथ। कहता है उसको रिमांड पर ले लिया पुलिस ने, अब वो जब गया जेल में तो जेल के माहौल को तो कभी सोचा ही नहीं था, इतने बड़े घर का, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बाबा के अनन्य, अब इतने वहां जाते ही लोगों की दृष्टि ऐसे लोगों पर बहुत खराब होती कि ऐसा करके आया क्या, इतना गंदा है। तो कहता है वहां मेरा 13 दिन तो जैसे नरक में बीता, और ऐसे लगे कि अभी कैसे मुझे छुट्टी मिलेगी, क्या होगा, अब मैं बाबा 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 के सिवा और कुछ नहीं, मैं सच्चा हूं, मैंने बाबा के लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा विघ्न, इतना बड़ा पेपर मेरे सामने, बस बाबा 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 ऐसे करता रहा। फिर बोला ने उसको समझाया, वो समझ गए, लोग तो समझ जाते हैं लोगों के हाव भाव से, उनके व्यक्तित्व से कि ऐसा करने वाला नहीं है। उसको खाने की छुट्टी दिया, सेंटर से खाना आएगा जेल में, सेंटर से खाना आएगा, और कहने लगा हमको दो ही चीजें चाहिए, एक भोजन चाहिए, एक मुरली चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ड्रामानुसार उसको मुरली में पता नहीं क्या मिला, मेरे को कहता है कि आपने जानबूझ के मेरे लिए मुरली भेजी थी। मैं नहीं भाई, मुझे पता नहीं, मैं तो 3 महीना पहले मुरली बनाता हूँ। कहता मुरली में मैंने उसी दिन की मुरली में पढ़ा, बच्चे जेल में जाने से डरते हो क्या, और मुरली में कोई आया होगा शब्द ऐसे, और बाबा ने किस कारण से बोला होगा। वो मुरली लेके बैठा था मेरे पास, मैं जब गया उससे मिलने, कि जेल में जाने से डरते हो क्या, वो पढ़ करके वो खुश हो गया। कहता बाबा ने देख लिया मुझे, विश्वास बैठ गया उसका। पहली पेशी हुई, और पहली पेशी में वकील जो उसने किया, उसने एक ही प्रश्न किया कि उस समय जो टाइम वो लिखा गया था, क्योंकि टाइम लिखते हैं, इस टाइम पर किया इसने ऐसा किया, उस टाइम पर तुम कहां थे। तो वो टाइम उसने कहा कि इस टाइम पर मैं सेंटर पर ये काम कर रहा था, उसको याद था वो टाइम। अब उसकी जज ने इंक्वायरी कराई, क्योंकि सेंटर पर तुम्हारे टीवी लगे हैं, कैमरे लगे हैं, और जब कैमरे की चेकिंग हुई तो सचमुच उसी सेकंड वहीं पर था जो उसने बोला, और बस जज ने देखा और 100% झूठा केस है, और कहा आगे के लिए आप लोग परिवार वालों को चेतावनी दी, अगर हमारे पास ऐसा केस लेके आए तो आपको जेल में डाल देंगे, ये झूठा केस, ऐसा लोगों पर ऐसे झूठे केस क्यों किए हैं। छूट गया एकदम, ऐसे कुछ नहीं हुआ, एक ही पेशी में छूट गया। उसके बाद मेरे साथ नाश्ता कर रहा था, बता रहा था अपना अनुभव, कहता अभी सब मानने लगे हैं धीरे धीरे, बाबा का रिट्रीट सेंटर तो मैं बना के छोड़ूंगा। परीक्षाएं आई, विघ्न आते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन अच्छा लडोल एक रस सच्चाई की जीत होती है, लेकिन परीक्षाएं आती हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम बाबा के बच्चे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वही पुराने हिसाब किताब कोई रहे हुए होते हैं, और वो अचानक पेपर बन करके सामना कर देते। सामना करने वाला सोचता है हम तो भगवान के बच्चे हैं, मेरे सामने क्यों आया, लेकिन कुछ तो किया है, भले सूली बन के नहीं आएगा तो कांटा बन के आएगा, आएगा तो जरूर मिटा तो नहीं है, दाग तो पड़ गया। अब दाग जो है उसको मिटाने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत योग का बल चाहिए, बहुत योग का प्रयोग चाहिए। अब ऐसी तपस्या तो कोई मुश्किल ही करता है, करते हो सभी, आप कहेंगे हम 3 दिन भट्टी किया है, लेकिन तपस्या के रूप में योग चाहिए। 2 प्रकार का योग हम करते हैं, रूरियान करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, ज्ञान की मनन चिंतन करेंगे, अच्छा है क्योंकि व्यर्थ से बचे रहते। लेकिन अगर कल मैं योग करा रहा था, हमने कहा आधा घंटे के लिए, केवल आधा घंटे का समय मैंने दिया, 50 का ग्रुप था, आधा घंटा के लिए आप सभी अपने निराकारी वतन में बीज बाप के साथ बैठ करके ऊपर एकदम बीज बन के बैठो, संकल्पों की भी हलचल न हो और अनुभव सिर्फ हो कि मैं आनंद के, प्यार के, पवित्रता के सागर में समाया हुआ हूँ। संकल्प है, शून्यता नहीं है, जड़ता नहीं है, लेकिन इस संकल्प में बैठ करके असीम शांति का, पवित्रता का, उस मूल वतन की मूल स्टेज का अनुभव करो। फिर मैंने पूछा आधा घंटे के बाद, कितनी देर क्या रही? चार पांच ने कहा हमारी अच्छी स्थिति रही। 50 में चार पांच ने बोला हमारी अच्छी स्थिति रही। कुछ न कुछ लहरें आ जाती, संकल्पों की, विकल्पों की, इधर की उधर की बातें आती हैं। अब इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, कोई बातें याद ना आए, एकदम बाबा के पास बैठ जाए, जिसको बाबा कहता पावरफुल योग, ज्वाला स्वरूप योग, शक्तिशाली योग, जिससे हमारे कड़े संस्कार चेंज हो, हमारे किए हुए पाप नाश हो जाएं। अब पाप नाश हुए उसकी निशानी क्या है? हम इतने समय से योग कर रहे हैं, नाश हो गए उसकी निशानी क्या है? नाश हुए हैं माना विनाश हुए हैं, तो कम से कम हमारी इंद्रियां शीतल तो होनी चाहिए, हमारे स्वप्न शुद्ध होने चाहिए, हमारे संस्कार बार बार से इमर्ज नहीं हो। नाश हो गए, विनाश हो गए, तो बातें बार बार क्यों आ रही सामने? तो ऐसी तपस्या हो जिससे लगे कि जो कल जीवन थी वो आज चेंज हो गई, बदल गई, फिर संस्कारों के विघ्न खत्म हो जाएंगे। नहीं तो कोई छोटी मोटी बात देखेंगे ना, फट से तूफान आएगा, विकल्प चलेंगे, विकर्म हो जाएंगे, कोई ना कोई गलत काम होने लगेगा। इसलिए तपस्या स्वरूप योग, भट्टी जिसको कहते, बैठो तो ऐसी एकाग्रता, इतनी एकांत, चले जाओ बाबा के अंत में, खो जाओ, समा जाओ। अब इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, गृहस्थी के बहुत सारे झमेले हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे में आधा घंटा तो निकालो, बैठ जाओ ऐसे तपस्वी मूर्त बनकर। संग से, मुरली से, अच्छे वातावरण से धीरे धीरे हमारे आदतों में चेंज आती है। जैसे सागर के अंदर आपने देखा है कई मूर्तियां ऐसे बनती हैं जो सागर के पानी से टकरा टकरा करके, पत्थर टकरा टकरा करके गोल हो जाते, पूजे जाते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं उनको तो छेनी हथौड़ी लगते हैं, वो सागर की लहरों से नहीं बनती। तो हम इतने पूज्य बनने वाली आत्माएं जो कहते हैं एकदम 100% सतो प्रधान बनेंगे, तो उसके लिए इतनी तपस्या है, वो तपस्या चाहिए। तपस्वी मूर्त बन करके योग करो, फिर प्रयोग करो। मान लो कोई संस्कार नहीं जा रहा है, उसको इमर्ज करके, जैसे कोई लेजर किरण डाली जाती है ना, जैसे कोई शरीर में बीमारी होती तो आजकल चीर फाड़ करने का इतना जोर नहीं देते, कहते हैं लेजर किरणों से हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, पथरी को भी, बड़ी पथरी को भी लेजर किरणों से तोड़ करके निकाल देते। ऐसे बाबा की वो जो लेजर की किरणें हैं, शांति की, पवित्रता की, आनंद की, सुख की, वो लेजर किरणें मुझ आत्मा पर आएं और मेरे संस्कारों को पिघला दें। पवित्र पतित पने के संस्कार, क्रोध के संस्कार, ईर्ष्या द्वेष के संस्कार, नफरत के संस्कार बिल्कुल समाप्त हो जाए। और समाप्त हो गए तो आप अनुभव करेंगे कभी भी जोश नहीं आएगा, उत्तेजना नहीं आएगी, आवेग नहीं आएगा, बिल्कुल शीतल काया वाला योगी, जिसके हर कर्म इंद्रिय शीतल हो जाए। जो बाबा ने कहा ना, अरे बच्चे घर का तो त्याग कर देते हैं लेकिन घर की वस्तुओं को नहीं छोड़ पाते, ये कर्म इंद्रियां जो है ना, ये वस्तुएं घर की, कोई ना कोई कर्म इंद्रिय, आंख है, कभी मुख है, कभी कान है, कभी कोई इंद्रिय धोखा देती रहती है। इसलिए देह मान का त्याग माना इन सब कर्म इंद्रियों पर जीत, ये सब कर्म इंद्रियां शीतल, स्वच्छ, पवित्र हो जाएं, चंचलता समाप्त हो जाए, इसके लिए तपस्या चाहिए। इन इंद्रियों की कोई भी रुकावट विघ्न बनेगी नहीं, यही विघ्न सबसे बड़ा विघ्न है। क्या और विघ्न हमारे आगे आएगा? लोग क्या कहेंगे? चलो कहने दो, जो कहते हैं पार कर लेंगे, संबंधी कहेंगे उनको भी पार कर लेंगे, हमारी अपने घर की बहुत सारी कर्मेंद्रियां हमारा विघ्न डाल रही हैं। कभी मन चंचल हो जाता है, कभी बुद्धि भटक जाती, कभी कोई कर्मेंद्री में चंचलता आ जाती, कभी आवेश आवेग आ जाता। कल एक टोटका में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जबान है ना, कहते इसको जबान को अगर चोट लग जाए तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, अंदर कुछ हो जाए तो उसमें लार है कुछ है तो धीरे धीरे वो क्योर हो जाती, लेकिन जबान से किसी को चोट लग जाए वो ठीक नहीं होता है। जो अच्छा लगा मुझे, क्या विचार था, अगर मंथन किसी ने अच्छा किया होगा, जबान से अगर कोई बोल दिया और किसी के दिल को लग गया, वो ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये कर्म इंद्रियों पर कितना कंट्रोल रखना पड़ेगा, कभी किसी को घाव नहीं दे देना, नहीं तो बहुत बद्दुआएं मिलती। इसलिए इतना कंट्रोल जबान पर आ जाए कि जो बोलना है वही बोलना है, और उतना ही बोलना है, अधिक नहीं बोलना है। तो अपने जबान पर कंट्रोल आ गया, क्योंकि जबान से ही स्वास्थ्य और जबान से ही संबंध, इन दोनों का संबंध है। स्वास्थ्य भी उसी कारण बिगड़ता है कि जबान पर कंट्रोल नहीं, खाया ये आया खा लिया, ऐसा आया खा लिया, थोड़े देर के लिए कंट्रोल कर लो, नहीं खाना है, ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, खा लिया। तो ये दोनों बातें, इसलिए कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करते करते आत्मा मालिक बन जाएगी। योगी तपस्वी मूरत आत्मा के आगे कोई विघ्न आएगा, प्रयोग करेगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर नहीं सुनाना, कोई संस्कार ऐसा हो ना जो आपको परेशान करता हो, अकेले में जाने से और ज्यादा उसकी उछल खाता हो, बाबा के पास बैठो, बाबा की लेजर किरणों को लो और उसको एकांत में ऐसे डालो, जैसे वो सूर्य की किरणें आती है ना, सूर्य की किरणें कहाँ आती, कांच पर आती, और कांच पर अगर किरण पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो अग्नि पैदा कर रही है। सूर्य की डायरेक्ट किरण अग्नि नहीं पैदा करती, लेकिन कांच के थ्रू रिफ्लेक्ट हो गई तो अग्नि पैदा कर देगी, एकाग्र हो गई, स्थिर हो गई तो जिधर जाएगी। अब सोलार क्या है, पानी के पाइप को पानी जा रहा है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर इतना एकाग्र होकर कांच के थ्रू डाल दी तो भाप बन गया, स्टीम बन गया, और उसने जाके बैटरी चार्ज कर दी। बाबा भी कहते हैं, बच्चे बाबा की वो किरणें इतनी एकाग्र कर लो और जिधर डालो उधर वो विघ्न खत्म हो जाए, तब विघ्न विनाशक बनोगे। शुभ चिंतक वृत्ति इसके लिए चाहिए, स्वार्थ वृत्ति नहीं। कई लोग कैसे योग करते हैं, ये व्यक्ति अगर सुधर गया ना तो बड़ा अच्छा सहयोगी बनेगा, बड़ी मदद करेगा, सहयोग मिलेगा, ये क्या है, स्वार्थ नहीं तो क्या है, अरे उसका भाग्य बन जाएगा, वो भगवान का वारिस बन जाए। हमारी भावना ये है कि वो बाबा से अपना अधिकार ले ले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले ले, वो भगवान को पहचाने। हमारी ये भावना नहीं कि हमारे पास आएगा तो हमको ये मदद करेगा। योग के प्रयोग की बड़ी अच्छी अच्छी विधियां हैं, लेकिन हम प्रयोग करते हैं तो कुछ न कुछ कामना लेकर के कर रहे हैं, चलो यहां योग करेंगे ना तो ये विघ्न खत्म होगा, ये जमीन हमको मिल जाएगी। जमीन हमको नहीं चाहिए, जमीन बाबा को चाहिए, बाबा अपने आप कराएगा। हमको कहता है तुम योग करो, तो विधि सिर्फ संकल्प को चेंज करने की है कि बाबा इस स्थान को इतना निर्विघ्न बना दो जो इस स्थान पर कई आत्माएं आए और अपना भाग्य बना करके जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या अपना ही घर बार छोड़ के बैठे, हमको क्या चाहिए। बाबा इस स्थान पर जो आत्माएं आए वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लें, और जितने बच्चे इस देवता कुल के इस यहां रहे हुए हैं वो सब यहां आए, हमारी ये भावना है, और इस भावना से इस स्थान को आपको निर्विघ्न बनाना है। तो संकल्पों में क्वालिटी में चेंज चाहिए, बस और कुछ नहीं, और उस चेंज क्वालिटी से अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प करने से बाबा की किरणें आएंगी, प्रयोग करेंगे और सिद्धि मिलेगी, विघ्न खत्म होंगे। कहीं पर भी विघ्न आए, हमारी दादी जी के मैं हमेशा ध्यान रखता था, कोई भी विघ्न कहीं पर भी आता था। एक बार क्या हुआ, किसी तांत्रिक ने किसी एक बहन पर प्रयोग किया, और वो प्रयोग ऐसा किया कि वो वहां पर उसकी फोटो के ऊपर अगरबत्ती लगाता था, फोटो पर अगरबत्ती लगाता था, उसके शरीर में जलन होने लगती थी जिधर वो लगाता था, इतना जरा बड़ा प्रयोग था। वो भाग के मधुबन आ गई, कहने लगी नहीं मैं किसी तांत्रिक के पास, मैं झाड़फूक के पास नहीं जाती। था उसके लिए बहुत बड़ा विघ्न, लेकिन बाबा में बड़ा निश्चय था कि बाबा मुझे हल करे, ठीक करेगा। वो आ गई यहां पर, दादी को पता चला, दादी कहा अच्छा ठीक है, आज हमारे मधुबन के भाइयों को मैं बोलती हूँ योग करेंगे, और तुम रात भर जाकर के आज बाबा के कमरे में, ओम शांति भवन बन गया था, वहां योग करो, परिवार सहित बैठो, परिवार था उसका, और वहां पर बैठ करके रात भर योग चला। यहां पर ही दादी ने भाइयों को बोला आज योग करना है, किस लिए करना है नहीं बताया, योग का ऐसा घेरा बनाओ कि इसका विघ्न खत्म हो जाए। दो चार दिन लगे योग किया, धीरे धीरे वो बीमारी उसकी खत्म हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। नहीं तो कितने एक के पास अगर आप चले गए ना भूल से भी, तो एक बीमारी के बजाय 10 डाल देगा आपके अंदर। हम सहारा लेते हैं, ठीक है करो, बाबा मना नहीं करता, कईयों कहता तुम्हारे विश्वास है तो जाओ, लेकिन अगर सतगुरु स्वयं भगवान में हमारा विश्वास है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, योग के प्रयोग की जरूरत। विघ्न है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, वायुमंडल में है, ईर्ष्या के बस है, स्वार्थ के बस है, कामनाओं के बस है, कई आत्माएं उसके चक्कर में फंसी हुई हैं, और ब्राह्मण आत्माएं भी अगर इस चक्कर में फंस गई तो कौन उनको मुक्त करेगा। मैं हमेशा अपनी बहनों को कहता कभी चक्कर में नहीं जाना, ये बहुत गलत चक्कर है, खराब चक्कर है। बाबा में विश्वास रखो और तपस्या का वातावरण बनाओ। अगर आपका योग नहीं लग पा रहा है, आप ऐसे साथी बहनों को भाइयों को बोलो वो आपके लिए योग करें, उनको तो नहीं डिस्टर्ब है ना कोई। तो हम सब शुभ चिंतक बन करके ऐसा एक ग्रुप बनाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी के सेंटर्स पर 5 या 10 का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ग्रुप होता है मिलिट्री अंडरग्राउंड होती, कहीं पर कोई समस्या होती कहते तुम चले जाओ बॉर्डर पर, चले जाओ यहां चले जाओ। ऐसे ही विघ्न विनाशक तपस्वी आत्माओं का ग्रुप हर सेंटर पर हो, जहां पर भी कोई ऐसे विघ्न दिखाई दे वो ग्रुप जाए, बिना बोले बिना वर्णन किए बिना उस बात को फैलाए बैठ करके तपस्या करे और वातावरण को इतना अच्छा बना दे जो विघ्न वहां के लिए विदाई ले ले। हो सकता है ऐसा? अभी मैं फरीदाबाद गया था, 800 भाई बहनों ने भट्टी की, उसके बाद टीचर्स आई उसमें 80 बहनें थी। मैं देख करके हमने कहा 80 बहनें एक फरीदाबाद में, कितने सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं अलग अलग, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, मुझे पता नहीं था। मैंने उनको कहा आप लोग योग के प्रयोग करते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे मोटे विघ्न, न बहनों की स्थिति बनती है न भाइयों की स्थिति बनती है, मकान बन रहे हैं, बड़ा ही विस्तार हो रहा है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं छोटी छोटी बात। कम से कम मास में तो एक बार योग करो तपस्या के रूप में। पिछले बार हफ्ते गया था, ये डेट देके आया था कल 29 तारीख की सोमवार, मास का लास्ट सोमवार आपको योग करना है। कल सब इकट्ठे हुए थे बाद वहां बल्लभगढ़ में, इतनी अच्छी भट्टी की, मुझे थैंक्स लिखा भेजा कि इतना अच्छा संगठन। हमने कहा हर मास करना, ऐसा नहीं मैंने एक बार बोला, मास में 2 घंटा तो कम से कम तपस्या का रखो, सेवाएं सेवाएं सेवाएं, फिर कोई ना कोई विघ्न आता है, फिर मूड खराब होते हैं, फिर तेरा मेरा होता है, फिर कई प्रकार के चक्कर चलते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक तपस्या की भट्टी हर सेंटर पर होनी चाहिए, और नहीं मान लो सेंटर पर हो रही उसकी परवाह नहीं करो, आप लोग कोई अच्छा सा स्थान चुन करके वहां तपस्या करो, तपस्या के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। बनाओ ग्रुप बैठ करके, अच्छा सा संगठन बना के 5-10 लोग बैठ के केवल तपस्या करो, व्यर्थ बातें नहीं करने के लिए ग्रुप होते, व्यर्थ बातों के ग्रुप बहुत जल्दी बन जाते, तपस्या का ग्रुप, शुभ चिंतक वृत्ति वालों का ग्रुप आपके सब विघ्नों को खत्म कर देगा। कोई छोटे मोटे विघ्न हैं, समाज है, इतना बदलता हुआ वातावरण है कलयुग में, हर क्षेत्र में अति हो रही है, और अति के समय अंत के पहले अति फिर आदि होगी। इसलिए बाबा हम सबको कहता बच्चे अति का प्रभाव आपके जीवन पर न पड़े, इसके लिए आप तपस्वी बनकर के योग के प्रयोग करना सीख जाओ, और योग के प्रयोग आपके सब विघ्न खत्म कर दे। कोई भी विघ्न होगा ना, लौकिक का होगा, अलौकिक का होगा, समाज का होगा, सरकार का होगा, प्रकृति का होगा, भटकती हुई आत्माओं का होगा, कोई विघ्न होगा परवाह नहीं है, बाबा बैठा है उसके साथ हमारा कनेक्शन है। ऐसा तपस्वी रूप बन करके तपस्या करो, कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, क्यों क्या कैसे उलझने की जरूरत नहीं, शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप स्वच्छ आत्मा भ्रकुटी आसन पर इस कुटिया में बैठे बस बैठ करके इतना सुंदर ओरा बना दो जो विघ्न अपने आप खत्म हो जाए। जितना आपका यह आभा मंडल अच्छा बनता जाएगा ना, पवित्रता का शुद्ध संकल्पों का घेरा बनता जाएगा, उतना ये छोटे मोटे विघ्न अपने आप समाप्त हो जाए, जरूरत है उसकी। तो इतना एकाग्रता का अभ्यास, बहुत अच्छा एकाग्रता का अभ्यास। अब जाने का, विस्तार में जाने का समय नहीं है, अंतिम समय में अचानक कुछ भी हो तो हम एक सेकेंड में चोले को उतारे और बाबा के साथ उड़ जाएं, हलचल ना हो, इतनी हम सबकी अंतिम तैयारी चाहिए। अंतिम समय के लिए हम सब इतना तैयार रहे कि बाबा आप चलो, आप कहो और मैं इस शरीर से निकलूं, आपके साथ चलो, कोई खिंचावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, ऐसा अभ्यास करना है। ठीक है, तो शरीरी बनने की ऐसी तपस्या करके, योग के प्रयोग करके विघ्न जीत बन जाओ। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी का। अभी सब कैसे रहेंगे? तो अभी सभी ने अपने आप में क्या समझते, निर्विघ्न बन के रहेंगे? विघ्न आएगा तो क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे, योग के प्रयोग करेंगे, योग, कोई भी विघ्न आता है तो योग का प्रयोग करेंगे। तो फिर से राजू भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।